नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महाबदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं पितं जेन भूतले सोयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद। आसक्त गृहस्थ कूटनीति तथा राजनीति से पूर्ण अपने पारिवारिक जीवन में रहा आता है, वह सदैव दुखों का विस्तार करता हुआ और इंद्रिय तृप्ति के कार्यों से नियंत्रित होकर अपने सारे दुखों के फल को झेलने के लिए कर्म करता है। यदि वह इन दुखों को सफलतापूर्वक झेल लेता है तो वह अपने को सुखी मानता है। तात्पर्य। भगवत गीता में भगवान स्वयं प्रमाणित करते हैं कि यह संसार कष्टों से पूर्ण नश्वर स्थान है। इस जगत में व्यक्तिगत या पारिवारिक, सामाजिक या राष्ट्रीय सुख का प्रश्न ही नहीं उठता। यदि कहीं सुख के नाम पर कुछ हो रहा है तो वह भी मोह है। इस जगत में सुख का अर्थ है दुख के फलों को सफलतापूर्वक झेलना। यह जगत ऐसा बनाया गया है कि जब तक कोई चतुर कूटनीतिज्ञ न हो उसका जीवन असफल रहता है। मानव समाज की बात छोड़ दें, निम्न पशुओं पक्षियों तथा मधुमक्खियों का समाज तक भोजन शयन तथा संभोग की शारीरिक आवश्यकताएं चतुराई से पूरी कर लेता है। मानव समाज में राष्ट्रीय स्तर पर या व्यक्तिगत स्तर पर स्पर्धा चलती है और इसमें सफल होने के प्रयास में सारा मानव समाज कूटनीति से भर जाता है। किंतु हमें स्मरण रखना चाहिए कि सारी कूटनीति तथा जीवन संघर्ष में सारी बुद्धि के होते हुए भी सारी वस्तुएं परमेश्वर की इच्छा होने पर क्षण भर में समाप्त हो जाएगी। फलतः इस संसार में सुखी बनने के हमारे सारे प्रयास माया द्वारा प्रदत्त छल मात्र हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की।
माता देवहूति ने जिज्ञासा किया था भगवान से कि हे प्रभु, इस प्राकृत जगत में जीव की क्या क्या दशा है, क्या कैसे संस्कृति भोगता है, इसको बताइए। इसको सुनने से संसार से आसक्ति नष्ट हो जाती। तो भगवान उसी का वर्णन कर रहे हैं। गृहेषु कूट धर्मेषु, यह संसार ऐसा है कि इसमें पारिवारिक जीवन में पड़ जाने पर व्यक्ति हमेशा झूठ बोलता है। कूट धर्मेषु का अर्थ है, कूट मतलब छिपा हुआ और धर्म मतलब कर्तव्य। ऐसे ऐसे कर्तव्य हैं कि उसमें झूठ बोलना ही पड़ता है और सब मिलाकर के दुख तंत्रेषु, इस संसार में कहने मात्र के लिए लोग सोचते हैं कि राजतंत्र है, प्रजातंत्र है, लेकिन वास्तव में ये दुख तंत्र है। भगवान बोल रहे हैं दुख तंद्रेशु गृहेशु, केवल दुख है इस संसार में। दो बात को जानना बहुत जरूरी है कि हम जहां रह रहे हैं यह जगत कैसा है, कितना खतरनाक है, एक बात ये, और दूसरी कौन ऐसा सुखद स्थान है, कौन ऐसा स्थान है जहां कोई भी झूठ नहीं बोलता है, सब सुखी हैं, तो वह स्थान कहाँ है। तो इस संसार से निकलने के लिए इसको, इसके दोषों को पहले जानना चाहिए। जब हम इस संसार के दोष को समझेंगे, यहाँ क्या दिक्कत है इसको समझेंगे, तब हम सुखमय स्थान के लिए जिज्ञासा करेंगे, खोज करेंगे। इस संसार के विषय में भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं दुखालयम अशाश्वतम, यह संसार दुख का आलय है और अनित्य है, यह क्षण क्षण बदलता रहता है और दुख का घर है। अनेक प्रकार के दुखों की व्यवस्था भगवान यहां किए हैं, दुख पर दुख, दुख पर दुख, केवल दुख ही यहां है। दुखालयम, आलय का अर्थ होता है स्टोर हाउस, घर, दुखा नाम आलय, दुखालय। तो जब इस संसार को बनाने वाला ही बोल रहा है कि यह संसार किस लिए मैं बनाया हूं, दुख भरने के लिए, यहां दुख वही भरे हैं, वही बनाए हैं और सब प्रकार के दुख यहां रख दिए, और इससे छूटने के लिए उपाय भी बताए हैं। भगवान एक श्लोक में कहते हैं माम उपेत पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मान संसिद्धिम परमाम गता। जो लोग, जो भक्तजन मुझको प्राप्त कर लेते हैं, वे फिर इस दुखालय में, इस अनित्य संसार में नहीं आते हैं, वे परम सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। परम सिद्धि है इस जगत से छूट करके भगवान के घर में चले जाना, वही परम सिद्धि है। भगवान ही ब्रह्म के और परमात्मा के आधार हैं, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम। अव्यय अविनाशी ब्रह्म की प्रतिष्ठा है भगवान, जो ब्रह्म है, सुख का एकमात्र स्थान है, पद है, उस ब्रह्म के भी आधार भगवान कृष्ण है। तो कहते हैं कि जो पुरुष मुझको प्राप्त कर लेता है, फिर इस अनित्य और दुखमय संसार में नहीं आता है। और एक श्लोक में तो डायरेक्ट अर्जुन को कहते हैं किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्ष तथा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्त भजस्व माम। अर्जुन, यह लोक अनित्य है और असुख है, यहाँ सुख नहीं है, इसको पा करके जितना जल्दी हो मेरा भजन करो और मेरे पास आ जाओ, मेरे धाम में। भजस्व माम, मेरा भजन करो, मेरी सेवा करो, और यहाँ से हमारे धाम में आ जाओ जहाँ सुख है और जो शाश्वत है, नित्य है। तो भगवान अनेक बार इस बात को कहे हैं गीता में, आ ब्रह्म भुवनान लोक पुनरावर्तिन अर्जुन। हे अर्जुन, ब्रह्मा जी के लोक तक जितने लोक हैं सभी पुनरावर्ती हैं। वहां रहने वाले जीवों को बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ना पड़ता है, लेकिन माम उपेत तो कौन तया पुनर्जन्म विद्यते। केवल मेरे पास आने पर उस व्यक्ति को फिर पुनर्जन्म में नहीं आना पड़ता है। पुनर्जन्म बहुत बड़ा दुख है। पुनर्जन्म का मतलब है जन्म लेना और मृत्यु के पंजे में रहना। हजारों बार, लाखों बार, करोड़ों बार मरना पड़ेगा। जन्म लेता है उसे मरना है, और जन्म मृत्यु के बीच में रोग और बुढ़ापा का दुख है, अनेक चिंता है। तो इसलिए इस जगत की अनित्यता और दुखमयता को समझ लेना चाहिए। इसको समझाने के लिए भगवान का अवतार हुआ है। भगवान कपिल देव इस ज्ञान को देने के लिए अवतार लिए। तो भगवान हमारी सहायता कर रहे हैं कई प्रकार से। इसको बहुत गहराई से लेना चाहिए। क्या बात है कि माता देवहूति इस जगत की स्थिति को सुनना चाहती है, और भगवान वर्णन करते हैं विस्तार से इस जगत की अनित्यता को और दुखमयता को। समझना बहुत जरूरी है। यहाँ यह दशा है कि यह है गृहेषु, पारिवारिक जीवन है, मैट्रियलिस्टिक जीवन, मैट्रियल जीवन जो है इस जगत में, भौतिक जीवन, ये वास्तव में दुखमय है। और कूट धर्मेषु, अनेक प्रकार के छल छद में यहां लगे हुए हैं। इस संसार में प्रत्येक जीव की ये दशा हो जाती है कि वो चोरी, हिंसा, वैर विरोध, झूठ बोलना, ये सब उसमें स्वाभाविक आ जाता है। छीना झपटी, कंपटीशन, अधिक से अधिक भोगों को इकट्ठा करने की भावना उसको होती है। और भोग, इंद्रियों के जो भोग हैं वे जलाते हैं। ये ही संस्पर्शजा भोग दुख यो नये होते। भगवान कहते हैं गीता में कि जो भी इंद्रियों के भोग हैं, देखने के, खाने के, स्वाद लेने के, स्पर्श करने के या सूंघने के, जो भी विषय हैं, ये सब दुख की योनियां हैं। दुख योनियां, अनेक प्रकार के दुख पैदा होते हैं इन भोगों से। आद्यंतवंत, और इनका आदि और अंत होता है। ये चालू होते हैं और खत्म भी हो जाते हैं। इंद्रियों के विषय अस्थाई नहीं रहते हैं। न तेसु रमते बुधा, इसीलिए बुधा विद्वान व्यक्ति इन भोगों में नहीं रमता है, सुख नहीं मानता है। तो इस संसार की दशा का वर्णन भगवान कर रहे हैं कि ये गृहेषु कूट धर्मेषु दुख तंत्रेषु, ये दुख तंत्र है, दुखों का साम्राज्य है यहाँ। इस संसार को भगवान ने ऐसा बनाया ही है, लेकिन फिर भी माया की ऐसी पकड़ है कि कुर्बन दुख प्रतिकारम सुखवन मन्नते गृही। व्यक्ति यहां पर दुख का प्रतिकार करता है, कोई दुख आ जाता है तो उसको छुड़ाना चाहता है, प्रतिकार करता है, और प्रतिकार कर लेता है तो उसी को सुख मानता है। जब तक इस जगत में रहेंगे तब तक सुख का कोई प्रश्न नहीं है। सुख तो एकमात्र भगवान में है, भगवान के नाम में, भगवान के चिंतन में सुख है, बाकी केवल दुख ही दुख है। प्रतिकार कर लेने से क्या होगा? श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि जैसे व्यक्ति प्रतिकार करता है, रोड संकीर्ण है तो रोड को बढ़ाने की कोशिश करता है सामाजिक समाज, रोड चौड़ा करना तो उसमें वो बहुत कोशिश करता है, प्रतिकार करता है। किस दुख का? कि बहुत भीड़ है, ट्रैफिक जाम होता है तो उससे बचने के लिए रोड का विस्तार करता है, परंतु प्रतिकार हो नहीं पाता है, फिर भी ट्रैफिक रहती है और दिन पर दिन ईंधन का दाम बढ़ता जा रहा है, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ता जा रहा है, व्यक्ति परेशान है। तो प्रतिकार करने से क्या होता है? कुछ नहीं होता है, प्रतिकार को ही वो सुख मान लेता है। प्रह्लाद महाराज भगवान से कहते हैं कि दुखौ सधम तदपि दुखम अतद्धिया हम भूमन भ्रमा भ्रमा में बद में तवदास्य जोगम। हे भगवान, पहले भगवान ने उससे पूछा, प्रह्लाद जी से पूछा, प्रह्लाद जी ने कहा कि इसका कि ये देवता लोग ब्रह्मा आदि ये सब आपके भक्त हैं, आपके विकराल रूप को देख करके और आपके मूड को देख करके सब डर रहे हैं। तब भगवान ने कह दिया कि यदि तुमको भी डर लगता है तो मैं इसको छिपा लूंगा, इस नृसिंह रूप को मैं तिरोहित कर लूंगा अगर तुमको भय लगता है। तो प्रह्लाद कहते हैं इससे भय नहीं लगता है हमको, हमको कोई भय नहीं है। ना हम विभेम अजित ते भयान काश्य जिहवार कर नेत्र भिकुटी रभसो दंष्टार। आपके भयानक मुख से जो पर्वत की गुफा के समान खुला है और आपके जीभ लपलपाती जीभ को देख करके मुझे भय नहीं है। आपके दोनों नेत्र सूर्य के समान दहक रहे हैं लेकिन उसे देख करके भय नहीं है। आपकी भ्रिकुटी चढ़ी हुई है, उसके चलन को देख करके मुझे भय नहीं लगता है। आपके विकराल दांतों को देख करके मुझे भय नहीं लग रहा। उग्र दंष्टार अंतरस्रज, आप आंत की माला पहने हैं, हिरण्यकश्यपु के आंत को निकाल करके पहन लिए लेकिन इससे मुझे भय नहीं लगता है। और आपके गर्दन के बाल पर खून के छींटे लगे हुए हैं, तत्काल के निकले हुए खून, इसको देखकर ही मुझे भय नहीं लगता है। और आपके कान खड़े हैं, इसको भी देख करके मुझे भय नहीं लगता है। आपसे मुझको कोई भय नहीं है, भय किसी दूसरी वस्तु से है। त्रस्तोस में हम मैं त्रस्त हूं। हे कृपण वत्सल, हे दीन बंधु भगवान, मैं दूसरी वस्तु से डर रहा हूं, वो क्या है? संसार चक्र कदनाद। संसार चक्र में फंस करके मैं दुखी हो रहा हूं, इस दुख से मैं त्राण चाहता हूं। संसार चक्र ग्रस्त, संसार चक्र कदनाद ग्रसताम प्रणीता। मैं इस संसार में जन्म मृत्यु के चक्र में पढ़ करके पीस रहा हूं, इससे मैं डरता हूं, आपसे नहीं। और मैं ऐसे बुरे समाज में जन्म लिया हूं जो ग्रसता वो सब जीवों को ग्रस रहे हैं। यहां ग्रसने का अर्थ है कि स्वयं भौतिकवादी हैं और सबको भौतिकवाद की शिक्षा दे रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं, काम कर रहे हैं। बद्धा स्वकर्म भी, मैं अपने कर्मों से बंधा हूं। उसत्तमा हे कमनीय प्रभो, वह समय कब आएगा जब आप अपवर्ग स्वरूप अपने चरण कमल में हमको बुलाएंगे? मैं आपके चरण में आ जाऊंगा, यही हमारा सुख है। इस संसार में केवल दुख है। प्रीतोपवर्ग शरणम वैसे कदानु, आप कब मुझको बुलाएंगे अपने चरणों में? तो भगवान ने कहा कि मैं तो प्रसन्न होता हूं दास्य से, भक्ति योग से। तब प्रहलाद जी कहते हैं, आप हमको शिक्षा दीजिए भक्ति करने की, हमको पता नहीं है। जस्मात प्रिया 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 प्रिय वियोग सजोग जन्म शोकाग्निना सकल जोनिषु दह्यमान। मैं प्रिय के प्रिय वस्तुओं के वियोग से और अप्रिय के संजोग से दुखी होता हूं, उससे मेरे हृदय में शोकाग्नि शोक की अग्नि जलती रहती है। सकल जोनिषु और सभी योनियों में दह्यमान मैं जल रहा हूं। मैं से तात्पर्य है प्रहलाद महाराज का, सभी जीवों की तरफ से भगवान से निवेदन कर रहे हैं। सभी जीव इस संसार में जलते रहते हैं। तो भूमन भ्रमामि, मैं भटक रहा हूं बद में तवदास्य योगम। आप हमको अपने दास्य योग भक्ति योग के विषय में शिक्षा दीजिए। बदा हमको उपाय बताइए कैसे इस संसार से मुक्त होऊंगा और आपके चरण कमलों में आऊंगा। ये बहुत महत्वपूर्ण उक्ति है प्रहलाद महाराज। भगवान उपाय बताएंगे तब हम इसे निकल पाएंगे, और उन्होंने उपाय बताया है भगवद गीता में। भगवान बहुत उपाय बताए हैं, सबसे श्रेष्ठ उपाय है भगवान की शरण लेना। भगवद गीता में सब कुछ बताए हैं। ये हम लोगों का कर्तव्य है कि भगवान की बात पर ध्यान दें, जो करने के लिए कहे हैं वो करें, जो छोड़ने के लिए कहे हैं उसको छोड़ें। अर्जुन ने पूछा भगवान से कि व्यक्ति पाप क्यों करता है, तो भगवान ने कहा कि काम पाप कराता है, ये जो कामना है हृदय में भोगों की यही पाप कराती है। तो आवृतम ज्ञान में तेना ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, वास्तव में जीव स्वरूप से ज्ञानी है। जीव का स्वरूप है कि उसमें ज्ञान रहता है, लेकिन उसकी चेतना को, कृष्ण भावना को यह काम आवृत किया है। आवृतम ज्ञानम, ज्ञानम मतलब चेतना, इसकी स्वाभाविक चेतना को ये आवृत कर लिया है, आवृत हो गया है। किसके द्वारा? काम रूपेण कौन ते दुष्पुरेणा नलेन च, काम के द्वारा यह आवृत है। हमारे जो हृदय में किसी भी विषय की कामना है, खास करके इंद्रिय सुख की, तो इस कामना को ही काम कहा जाता है। तो यह काम हमारे नित्य सिद्ध स्वरूप को ढक दिया है। आवृतम ज्ञान में तना ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, ज्ञानी के ज्ञान को इस नित्य वैरी ने ढक लिया है। इसका नाम है काम। काम रूपेण कौन तया दुष्पुरेण, यह कभी तृप्त नहीं होगा। कितना भी अमाउंट दे दिया जाए, हम जो भी कामना करते हैं वो सारे विषय सुख मिल जाए, फिर भी इसका पेट नहीं भरता है। और यह अनल है, प्रचंड अग्नि है। जैसे आग में पड़ जाने पर व्यक्ति जलता रहता है, वैसे ही अग्नि हृदय में जहां कामना उत्पन्न होती है वहीं से जलाता रहता है। और भगवान ने स्पष्ट आदेश दिया, गीता में इस तरह का आदेश भगवान बहुत कम दिए हैं। जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम, इस शत्रु को मार डालो, इस काम रूप दुरासद बहुत प्रचंड शत्रु को जही मार डालो, इसका वध करो। तो यही दुख का कारण है, इंद्रिय भोगों की कामना। और जीव जलता रहता है, जब तक इस संसार में है, जब तक माया बंधन में है, तब तक वो जलता रहेगा। चाहे वो स्वर्ग जाए या नरक में या इस पृथ्वी पर कहीं भी रहे, वो जलता रहेगा। सकल योनिषु दह्यमानः, प्रह्लाद जी कहते हैं मैं सभी योनियों में दह्यमानः दग्ध हो रहा हूं, जल रहा हूं। आप जरा विचार कीजिए, कोई बहुत बड़ा मरुभूमि हो और केवल मरुभूमि में बालू ही बालू है। जिन लोगों ने मरुभूमि को देखा है वे समझ जाएंगे। कई योजन में, कई मीलों में केवल बालू बालू बालू। और गर्मी का महीना है, जेठ की दोपहरी, जेठ का महीना, उसमें सूरज बहुत तपता है, बहुत लू लगती है और गर्म हवा चलती है, तो बालू तप्त हो जाता है। और वैसे मरुभूमि में जो बहुत दूर में है, कुछ हरिण के समूह पड़ गए हैं, मृग, जिसको श्रीमद् भागवतम में मृग तृष्णा कहा गया है। मृग तृष्णा, मृग की प्यास, मृग प्यासा रहता है, झुंड के झुंड मृग, अलग अलग जूथ के। और मान लीजिए उस दोपहरी में दौड़ रहे हैं, दौड़ते हैं किस लिए? पानी के लिए, जल के लिए। जल कहीं उनको दिखाई देता है मरुभूमि में, जल है नहीं, पर सूरज की किरणों के कारण लहराता सरोवर दिखता है आगे, और दौड़ते हैं जाते हैं तो वो सरोवर और आगे ही चलता जाता है, वो तो है नहीं, किरणों के कारण दिखाई पड़ता है। तो उसको आगे देख करके हरिणी का दल दौड़ रहा है, उत्तप्त बालू का है। बालू जैसे भाड़ भूंजे की भाड़ के समान, भाड़ में जैसे बालू गर्म रहता है, उत्तप्त रहता है, इस तरह से उमर भूमि तप्त है और उसमें वे दौड़ रहे हैं हरिण, और दौड़ रहे हैं केवल जल के लिए। जल मिलेगा, पी लेंगे, सुखी हो जाएंगे, पर जल वहां है नहीं, केवल उनको दिखाई पड़ रहा है अज्ञान से। तो उस जल के लिए वे दौड़ते रहते हैं, वहां गए तो दूसरी जगह जल दिखाई पड़ता है, फिर उधर गए तो उधर दिखाई पड़ता है, और झुंड के झुंड मृग दौड़ते रहते हैं मरुभूमि में। प्रत्येक जूथ है अपने आगे वाले को देख रहा है और सोचता है वो तो पहुंच गए जल के पास और तृप्त हो गए, उनकी प्यास बुझ गई। पर प्यास क्या बुझेगी, वहां जल है ही नहीं, वहां जल नहीं है, कोई शीतलता नहीं है, एक भी वृक्ष नहीं है, कुछ भी नहीं है, केवल बालू का बिछी है। तो उसमें दौड़ते हुए हरिण के दल क्या सुख पाएंगे, यही दशा हम लोगों की है। दौड़ रहे हैं यहां से वहां जाओ, इस शहर से उस शहर में जाओ, यहां से वहां। हम ये सोचते हैं कि हमारे से आगे वाला व्यक्ति, मतलब समृद्ध व्यक्ति, हमसे समृद्ध है, वो सुखी है, वो सुखी है, हम भी उस पोजीशन पर चले जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे। बस दौड़ है, लेकिन दौड़ में क्या मिलेगा? दौड़ में बस वही तड़पन, प्यास तो बुझेगी नहीं, और दौड़ने से और तड़पन होगी, गिर कर छटपटाएगा, मर जाएगा, जीभ निकल जाती है तड़पन में, भांपने में। और फिर भी व्यक्ति सोचता है अब सुख भेंट लिया, अब सुख भेंट लिया, अब जल मिल गया, लेकिन जल का तो नामो निशान नहीं है। इसी तरह इस संसार में सुख का कोई स्थान नहीं है, ये दुखालय है, और हम इसी दुखालय में सोचते हैं कि आगे वाला सुखी है, अगर हमसे थोड़ा सा समृद्ध है तो सोचते हैं वो सुखी है, हमको भी वैसा भोग जुटाना है, हमको भी वैसी सुविधा प्राप्त करनी है। तो केवल कंपटीशन लगा हुआ है और सोचता है कि अब सुख पा जाऊंगा, अब सुख पा जाऊंगा, लेकिन इसमें परेशानी केवल है, श्रांति है और तड़पन है। यह प्राकृत जगत ठीक इसी तरह से है। हम लोग सोचते हैं कि अमुक व्यक्ति धनी है, वो सुखी है, लेकिन कोई सुखी नहीं, इस दुखालय में कौन सुखी हो सकता है? हम सोचते हैं धन में सुख है, स्त्री में सुख है, मान सम्मान में सुख है, पद और अधिकार में सुख है, लेकिन यहां सुख किसी जगह नहीं है, इस दुखालय में हम सुख खोज रहे हैं, ये हमारा भ्रम है, यह अज्ञान मिट जाए बस ये ठीक है। तो भगवान एक ज्ञानी गुरु के रूप में अवतार लिए हैं, भगवान कपिल देव के रूप में, और वे ये बता रहे हैं कि ये संसार दुख तंत्र है, कुट धर्म है, यहां कोई सुख नहीं है, केवल दुख है, अज्ञान बस दुखों के प्रतिकार को ही व्यक्ति सुख मान लेता है। हरिण आगे आगे जो दौड़ रहा है उसको पीछे वाला हरिण सोचा है वो पहुंच गया जल के पास। इसी प्रकार हम लोग सोचते हैं, अमेरिका वाले सुखी हो गए, जर्मनी वाले सुखी हो गए, भारत वाले ऐसा सोचते हैं, लेकिन वहां केवल दुख ही है, सुख का तो नामो निशान नहीं है। सुख कहाँ है? सुख है विहाय कामान यह सर्वान पुमान शरत निःस्पृह, जिसकी कहीं ममता नहीं है, अहंकार नहीं है, देह में आत्मबुद्धि नहीं है, वह व्यक्ति समस्त कामनाओं से मुक्त है, वो सुखी है। कोई कामना नहीं है, भगवान के स्मरण में विभोर है, वो सुखी है। और सब जगह जलन है, वो बेचारे हरिण तो एक बार मरते हैं मरुभूमि में, तड़प तड़प करके मर जाते हैं, लेकिन मानव ऐसा पशु है, ये जीवन भर तड़पता रहता है भोगों के लिए, हमको ये नहीं मिला ये नहीं मिला, और जीवन भर सोचता रहता है और मरता है, और भोगों का चिंतन करके मरता है, भोगों को भोग करके मरता है, इसलिए उसके लिए नरक निश्चित है। और नरक में कितनी बड़ी यातना है इसका भागवत में वर्णन किया गया, और इसी अध्याय में वर्णन है। बहुत भयंकर यातना भोगनी पड़ती है। जब तक भोगों की कामना है तब तक पाप होते रहते हैं, और भोग मिलने पर भी पाप होता है, भोग इकट्ठा करने में पाप होता है, झूठ कपट बेईमानी सब करनी होती है, दूसरे जीव को दुख देना पड़ता है जिस काम में, सब पाप है। और पाप करने पर पाप का परिणाम भोगना ही पड़ता है। तो भले कोई आज आंख बंद करके डिनाई करे कि नहीं हम तो कहीं नरक देख नहीं रहे हैं, लेकिन हमारे कहने से क्या होगा, नरक है और नरक में जाना पड़ता है। एक श्लोक में भगवान कपिल देव कहते हैं कि हे मेरी माँ, यहां भी नरक और स्वर्ग जैसा वातावरण है, अगर किसी को नरक पर स्वर्ग पर विश्वास नहीं होता है तो भगवान कपिल देव कह रहे हैं कि यहाँ क्या नरक नहीं है, सुकर कुकर आदि की योनियों में जीव दुर्दशा में है, वह क्या नरक नहीं है, यहाँ स्वर्ग भी है नरक भी है। तो हम विषय भोगों की इच्छा से मुक्त हो करके तब स्वर्ग जा सकते हैं या वैकुंठ जा सकते हैं, लेकिन इस प्राकृत जगत में कहीं सुख नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति देखता है कि आगे वाला सुखी हो गया, वो सुखी है, वो धनी है, वो स्त्री वाला है, वो परिवार वाला है तो सुखी है, क्या सुखी होगा वो? आगे हरिणी चला जा रहा है दौड़ करके, तो आगे भी वही उत्तप्त बालुका है, वही थकावट छटपटाहट है, सुखी नहीं हो सकता। ये विश्वास कीजिए, यहां धन कमाने से कोई सुखी हो नहीं सकता है, या मान सम्मान मिलने से, पद अधिकार मिलने से कोई सुखी नहीं हो सकता है। सुखी हो सकता है तब जब सभी कामनाओं को छोड़ दे, मुक्त हो जाए और भगवान का स्मरण करे, बस उसमें सुख है, और कहीं सुख नहीं है। जैसे किसी को कोई भीषण कष्ट हो रहा है, रोग है, और वो ऑपरेशन करा लेता है तो सोचता है कि ये सुख मिल गया हमको। नहीं, वो केवल उस दुख का प्रतिकार हुआ है। जो पहले दुख हो रहा था उस दुख का को दबा दिया तो सोचता है कि सुख हो गया। सुख तो यहां है नहीं, स्वयं दुनिया को बनाने वाले भगवान बोल रहे हैं। अगर इस संसार में कहीं किसी जगह कोने में भी एक का सुख रहता तो भगवान कह दिए होते कुछ सुख पड़ा हुआ है, लेकिन वे कहते हैं दुखालयम, केवल दुख ही भरा हुआ है। तो भगवान से ज्यादा ज्ञानी कौन होगा, जानकार कौन होगा। अब दूसरे लोग यही सुख खोजते रहते हैं, यहीं पर कैसे मिलेगा, सुख है ही नहीं तो कैसे सुख मिलेगा। इस संसार में केवल इंद्रिय का संयोग है विषयों से, और उसको कभी अनुकूल मान लेते हैं, कभी प्रतिकूल मान लेते हैं। जब हमारे मन में अनुकूल वृत्ति का उदय होता है तो कहते हैं सुख मिला, और प्रतिकूल दुख हुआ। तो बेटर है कि प्रतिकूल भावना करना, क्योंकि यहां दुख ही है। इंद्रियों से कुछ भी भोग करके अपने को सुखी नहीं मानना चाहिए। बहुत कीमती वस्त्र पहनने को मिल जाए तो उसमें सुख बुद्धि न करे, बहुत बढ़िया घर मिले तो उसमें कभी भी अनुकूल बुद्धि न करे कि अच्छा है। अच्छा बुद्धि करेगा उस फंसेगा, वो और मरेगा। तो इसलिए संसार के भोगों में दुख बुद्धि करना ये उचित बुद्धि है, क्योंकि भगवान ने दुखमय बनाया है। किसी भी भोग में, चाहे बढ़िया कार हो, बढ़िया मकान हो, या परिवार बहुत सुशील है, सभ्य है, पढ़ा लिखा है, ये सब भोग हैं और नश्वान हैं और दुखमय हैं। इसमें संतुष्ट न हो करके भगवान के नाम में संतुष्ट रहना चाहिए। हमेशा भगवान के बारे में सोचे, पढ़े, सुने, बस इसके द्वारा वो सुख प्राप्त करेगा, और संसार में सुख नहीं है, बहुत दुख है। भगवान इस संसार की वास्तविक स्वरूपता को बता रहे हैं, यही संसार का स्वरूप है। बनाने वाले भगवान ये कभी नहीं कहे कि यहाँ अच्छा से भोगो, अच्छा से रहो, कभी नहीं। इसमें दुख देख करके इससे भागो, शाश्वत स्थान में, स्थानम प्राप्त से शाश्वतम, एक नित्य लोक है और एक सुखमय स्थान है। ये दुखमय है, लेकिन एक दूसरा जगत है जो दिव्य है और परम सुखमय है, वो है मेरा धाम, तद धाम परमम मम। वहां जानने की कोशिश करनी चाहिए। भगवान निमंत्रण दे रहे हैं और भगवान उपाय भी बताते हैं। भक्ति योग करके व्यक्ति वहां जा सकता है। तो भक्ति में लगे रहना, रात दिन केवल इसी प्रयास में रहना, यही बुद्धिमानी है। और यहाँ भोगों में आसक्त रहने वाला व्यक्ति बुद्धिमान नहीं है, वो बुद्धू है। हरे कृष्ण।